وجوه ستت كي جان پانے وجوه ہے ستت کے ول جان بولے بھگوان مہاویر سوامی کی آچاری کند کند سوامی کی آچاری گروور ودیا ساگر منی مہاراج کی ہم سبھی لوگ پچھلے دنوں سے اس بات پہ وچار کر رہے ہیں کہ ہمارے جیون کو جب یہ طے ہے کہ ہم ہی اچھا اور برا بناتے ہیں تو ہم کیسے اپنے جیون کو جہاں جہاں ہماری اجانتا جہاں ہماری بھول سے اس میں ملنتا آ گئی ہے اس کو کیسے ہم نرمل بنائیں اور جب بھی جیون کو نرمل بنانے کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے درشٹی کو نرمل بنانا ضروری ہے یہ ہم نے پچھلے دنوں بہت پرکار سے وچار کر کے دیکھ لیا ہے کہ اس کے بنا ہمارا کام نہیں بنے گا اور درشٹی کی نرملتا کے معنی ہیں سچے دیوگرو شاستر پر شردھا آتما میں روچی اور سنسار شریر اور بھوگوں کی واستوکتا کا گیان جس کو یہ سب باتیں بہت اسپشٹ ہیں جس کا کانسیپٹ ان سب چیزوں کو لے کے ایک دم کلیئر ہو گیا ہے اس کی درشٹی نرمل ہے یہ ہم نے جان لیا ہے درشٹی کی نرملتا کوئی بہت کٹھن بات نہیں ہے جو چیز جیسی ہے ایز اٹ از اسے ویسا ہی انترنگ میں انبھو کرنا جاننا شبد نہیں کہہ رہا ہوں اسے ویسا ہی انترنگ میں انبھو کرنا اور انبھو میں سے جو گیان آتا ہے یا انبھو ہونے کے بعد جو گیان آتا ہے سچ مچ وہی گیان سمیچین گیان ہے ہماری اپنی انبھوتی میں سے نکلا ہوا گیان ہے اور پھر وہ ہمارے پورے کے پورے جیون کو پریورتت کر دیتا ہے ہمیں کسی بات کا ٹھیک ٹھیک انبھو ہو ہم اس بات کو ٹھیک سے وچار کریں اسے سوچیں اور پھر اس کے انوسار کاری کریں تو دیکھیے ریزلٹس ہمارے فیور میں ہوتے ہیں تینوں چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں جیسے ٹرائنگل ہوتا ہے اور ٹرائنگل میں سے یہ لگتا ہے کہ دو سے بھی کام چل سکتا ہے ایک چھوٹا سا بیٹا تگوڑی بھی کہتے ہیں اس کو ٹرائنگل ٹرائی پارٹ جو بھی آپ کہیں منڈی میں تو اس کو تگوڑی بولتے ہیں اس پہ کانٹا لگا کر کے جو ہے وہ تولتے ہیں اس کا تو وہ ایک دن کھیل کھیل میں وہ اس کے اوپر چڑھا تو وہ دو ڈنڈے پکڑ کے چڑھا اور اوپر پہنچ کے اس نے سوچا کہ چڑھنا تو دو ہی سے ہو گیا یہ تیسرے والے کا کیا ضرورت ہے تو اس نے تیسرے والے کو ایک پیر مار دیا اوپر چڑھ کے تو بتائیے کیا استھتی بنی وہ نیچے آ گیا یہ تینوں ایک ساتھ ہونا بہت ضروری ہے ہم ان میں سے دو پر وچار کر چکے ہیں اب ہم اس تیسرے والے پر بھی وچار کرتے ہیں ایسا مان کر کے کہ وہ تیسری بات بھی ضروری ہے اگر ہم نے کسی چیز کو ٹھیک ٹھیک انبھو کر لیا ہے ہمارے گیان میں وہ چیز آ گئی ہے اس میں ہمارا انٹرسٹ بھی کریٹ ہو گیا ہے ہماری روچی بھی اس میں ہے ہمارا جھکاؤ بھی اس طرف ہو گیا ہے تب اب ہمیں اسٹیپ رکھنا پڑیں گے ہمیں آگے بڑھنے کے لیے کچھ تھوڑا بہت تو چلنا پڑے گا एक और उदाहरण है अगर अपन समझे तो कि क्यों जरूरी है। जैसे अपने को छत पे जाना तो काहे से जाएंगे, सीढ़ी लगा के जाएंगे। सीढ़ी कैसे बनती, दो लाठियां हैं और उनके बीच में स्टेप्स हैं। वो जो दो लाठियां हैं वो तो सम्यक दर्शन और ज्ञान की प्रतीक हैं, और वो जो स्टेप बीच में लगे जिन पे एक एक करके पैर रख के हम ऊपर चढ़ेंगे वो क्या चीज है, वो हमारे हमारे पुरुषार्थ का प्रतीक है, वो हमारे आचरण का प्रतीक है। ऊंचाई छूने के लिए सम्यक दर्शन और ज्ञान हो जाने के बाद चारित्र आना बहुत जरूरी है। जैसे कि डॉक्टर पर हमारा विश्वास भी है, डॉक्टर ने जिस तरह से हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, हमें जिसके साथ खाने को कहा है वो सब हमने समझ लिया है, लेकिन हम वो पर्चे पे ही लिखे रहें और अगर उसका सेवन नहीं करें तो बताइए डॉक्टर का विश्वास और दवा का ज्ञान क्या हमारे रोग को ठीक कर देगा। जैसे दवाई का सेवन जरूरी है, ऐसे ही अपने जीवन में सम्यक दर्शन और ज्ञान, दृष्टि और ज्ञान निर्मल हो जाने के बाद आचरण की निर्मलता के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। ये दृष्टि की निर्मलता के लिए ज्यादा उतना प्रयत्न नहीं है, ना ज्ञान के निर्मल बनाने के लिए उतना प्रयत्न करना पड़ता है, लेकिन अपने आचरण को पवित्र बनाने के लिए बहुत प्रयत्न आवश्यक है। मोह तिमराप हरने दर्शन लाभात अवाप्त संज्ञाना। अरंत भगवान के प्रति हमारी भक्ति थी और उस भक्ति के चलते हमने अपने मोह को नष्ट कर दिया। सच्चे देवगुरु आश्वास की श्रद्धा और इस संसार शरीर और भोगों की वास्तविकता जानने से हमारे मोह का अंधकार नष्ट हो गया। मोह तिमराप हरने दर्शन लाभात, हमारी दृष्टि निर्मल हो गई, सम्यक दर्शन हो गया। अवाप्त संज्ञान, फोकट में उसके साथ साथ आ गया है सम्यक ज्ञान, कोई बिना प्रयास के, कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। बस इतने ही है कि थोड़े बुद्धि और ज्ञान को, जैसे कल हमने समझा था कि दोनों में जैसा फर्क है, वो फर्क जान करके हमने बुद्धि को विकसित नहीं किया है, ज्ञान को हासिल कर लिया है। एक चीज और अपन को समझने की थी कि बुद्धि को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, बड़ा अभ्यास चाहिए, और आज के समय में लोग बौद्धिक बहुत हैं और बहुत मेहनत करके वो चाहते हैं कि हम बुद्धिमान बने, लेकिन जैसे ही मोह हटता है, जैसे ही दृष्टि निर्मल हो जाती है, हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है जो हमारे जीवन का कल्याण करता है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। ज्ञान एडॉप्टेड नहीं है, गोद लिए बेटे की तरह नहीं है, वो स्वयं अपने भीतर से जन्म लेता है। जैसे ही दृष्टि निर्मल होती है वैसे ही ज्ञान हमारे भीतर निर्मल हो जाता है, यह कि वास्तव में वो ज्ञान कहलाने लगता है। ये बात अपन ने समझी थी। उसके बाद कह रहे हैं कि राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। यहां साधु के मायने सिर्फ मुनि महाराज नहीं है, यहां साधु के मायने हैं जो सज्जन हैं, जो अपना आत्म कल्याण चाहते हैं, वे राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र को अंगीकार करते हैं। दो बातें एक साथ कह दी कि यदि हम सज्जन हैं और हमारी दृष्टि निर्मल हो गई है, हमारा ज्ञान निर्मल हो गया है, तो भैया आप देर नहीं करनी चाहिए, फाउंडेशन आपकी बन गई है तो आगे कंस्ट्रक्शन करो, थोड़ी सी जगह तो बना लो कि छाया में बैठ सको। फाउंडेशन तो बहुत आपका मजबूत हो गया है, सम्यक दर्शन ज्ञान ये फाउंडेशन की तरह है और उसके ऊपर जो हम शेड बनाते हैं वो बहुत जरूरी है, वो हमारे चारित्र का प्रतीक है। तभी हमको शांति मिलेगी, तभी हमको छाया मिलेगी, इस संसार की तपन से हम तभी बच पाएंगे। तो राग द्वेष की निवृत्ति के लिए मुझे यदि मेरे भीतर थोड़ी भी सज्जनता है, ऐसा कह रहा हूं मैं, आचार्य भगवंतों ने तो सिर्फ साधु शब्द लिखा है, पता नहीं मुझे ऐसा कहना चाहिए कि नहीं, कि अगर थोड़ी भी सज्जनता मेरे भीतर है अगर, तो मुझे अपने राग द्वेष को मिटाने के लिए, राग द्वेष को घटाने के लिए और चारित्र तो अंगीकार करना ही चाहिए। यदि हम उससे विमुख होते हैं तो हमारे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह तो लग ही जाता है कि शायद अभी हुआ नहीं है, अगर हो गया होता तो उत्सुकता जागे बिना नहीं रहती कि मैं कैसे करूं, ये राग द्वेष मेरे नहीं है, ये मेरे विकारी परिणाम है, और जब तक घर में अगर कचरा फैला हुआ हो तो कौन व्यक्ति होगा जो ये सोचेगा कि नहीं ये तो कचरा मेरा ही है, मैं इसको काय को हटाऊं। कचरा मेरा नहीं है, कचरा बिल्कुल फॉरेन है, बाहर से उड़ करके और इकट्ठा हुआ है, या मेरी ही अपनी अज्ञानता से मैंने क्यों नहीं खिड़की दरवाजे सब बंद किए, मैंने काय को आश्रय और बंद करा नहीं तो ये कचरा काय को इकट्ठा होता, अनादिकाल से मैं इकट्ठा करते आ रहा हूं राग द्वेष का कचरा, अब मैं क्या करूं उसको बाहर हटाने के लिए, क्योंकि मुझे घर में बैठना भी मुश्किल हो गया। अब देखो तो थोड़ी सी कहीं से दुर्गंध आने लगे तो वहां बैठना हम पसंद नहीं करते हैं, और कषायों की मलिनता हमारे भीतर निरंतर बढ़ती जाती, उसकी दुर्गंध जरा भी नहीं आती, हम एडिक्ट हो गए हैं, हम शायद उस सब के आदि हो गए हैं। ऐसा होना चाहिए जैसे कचरा हमें अपने घर में भला नहीं जान पड़ता है, ऐसे ही हमारे अंतरंग में जो राग द्वेष भाव उठते हैं वो जिस दिन हमें ऐसा लगने लगेगा कि ये सब ठीक नहीं है, क्या हम उनको हटाएंगे नहीं? और हमको तो दृष्टि मिल गई है कि ये कचरा है, अब तो हमें ज्ञान हो गया है कि हाँ सचमुच ऐसा ही है, अब इसके बाद भी हम अगर उसे अपने हाथ धरे रहे तो भैया हमसे ज्यादा और कौन गैर बुद्धिमान होगा। सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावगम, उवयम पी जाने सोचा जम कल्याणम, जम शियम तम समाचरी। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जहां सुखम मां पणिबंध करे, तुम्हें जिसमें सुख मालूम पड़े वो करो, मेरा कोई प्रतिबंध नहीं है, ऐसी भाषा बोलने वाले भगवान महावीर स्वामी वो कह रहे हैं कि ये जीव सुनकर के ही कल्याण का मार्ग जानता है और सुनकर के ही अकल्याण का मार्ग जानता है, दोनों मार्ग वो सुनकर के जानता है। अब जमशियम तम समाचरी, जिसमें तुम्हें अपना कल्याण मालूम हो समाचरी उसका आचरण करो, अगर सुनकर के तुम्हें अकल्याण का रास्ता ही ठीक जान पड़ता है तो हमारा हमारी कोई बंदिश नहीं है, आपको जैसा करना वैसा करो। पर सुनने के बाद आप ये तो विचार करो कि किम श्रियम, मेरा हित किसमें है, दोनों चीजें आपने जान ली, आपने अपनी दृष्टि को निर्मल बना लिया है, अब तो आप जानने के बाद दृष्टि निर्मल होने के बाद स्वयं तो थोड़ा विचार तो करो। हमारे भगवान हमें वैशाखी नहीं देते, हमारे पैर मजबूत करने के लिए हमें इशारा जरूर करते हैं, और दूसरे की वैशाखी पर कोई कह दिन चलेगा अपने पैर ठीक करो, और सहारा चाहते हो तो केम विद मी आई एम विद यू, आओ मेरे साथ मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, ये बहुत बाद में कहते हैं, तुम मेरा साथ लोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूं, वैसे मैं किसी के साथ नहीं हूं और सबके साथ हूं। ये हमारी अपनी चॉइस है कि हमें जाना है साथ में कि नहीं, हमें उस बताए रास्ते पे चलना है कि नहीं, मैं हाथ पकड़ के नहीं चल सकता हूं, फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, अगर अच्छा लगता है तो। इतना स्पष्ट, एकदम कहीं कोई कहना चाहिए एकदम बड़ा साइंटिफिक लगता है, एकदम कहीं कोई ऐसा क्या कहें उसको, कहीं अंधविश्वास जैसा ब्लाइंडली हमें फेथ करना है, ऐसा कहीं भी नहीं है। सब स्पष्ट है, जान लो और फिर उसके बाद जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करो। यदि अंतरंग में ये लगने लगा है कि मेरे राग द्वेष परिणाम मेरे जीवन का बिगाड़ करते हैं, मेरे आचरण को मलिन करने वाली यही राग द्वेष परिणाम है, तो फिर उनकी निवृत्ति के लिए चारित्र अंगीकार करो। मैं चारित्र का बखान तो कर दूं, लेकिन मेरे भीतर राग द्वेष जो विकृतियां हैं उनको अलग करने का भाव ना आए और मैं सिर्फ चारित्र बाहर से अंगीकार कर लूं, तो ऐसे चारित्र का निषेध भी किया है और शुरुआत में तो ऐसे चारित्र की विधान भी किया है कि चलो राग द्वेष की निवृत्ति, अभी तुम्हें इतनी समझ नहीं आई है कि मैं अपने राग द्वेष को हटाने के लिए चारित्र अंगीकार करूं, कोई बात नहीं, चारित्र तो अंगीकार कर लो, धीरे धीरे करके राग द्वेष भी हटते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जब राग द्वेष हट जाएंगे तभी मैं चारित्र अंगीकार करूंगा, नहीं, राग द्वेष हटाने के लिए मुझे चारित्र अंगीकार करना है, मैं चारित्र अंगीकार कर लूंगा और धीरे धीरे राग द्वेष हटाऊंगा, ये मेरा अप्रोच रहेगा। मुझे ये हमेशा ध्यान में रहे कि मैंने जो चारित्र अंगीकार किया है या जो संयम धारण किया है वो काय के लिए है, मेरे राग द्वेष को हटाने के लिए। देखो तो दृष्टि निर्मल होती है तब भी, कहते हैं कि राग द्वेष घटाने के श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन है, राग द्वेष घटाने के ज्ञान का नाम ही सम्यक ज्ञान है और राग द्वेष घटाने की क्रिया का नाम ही सम्यक चारित्र है, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस राग द्वेष को हटाना है, ये मालूम पड़ने लगे कि हाँ हटाना है, ये ज्ञान हो जावे कि भैया राग द्वेष हटाना है, और ऐसी क्रिया होने लगे कि राग द्वेष कमती हो जावे, हमारा कल्याण उसी क्षण शुरू हो जाता है। बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत कोई दुरूह या कि बहुत कठिन रास्ता नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन तय हमें करना पड़े। बस कठिनाई सिर्फ ये है, हमें लगता है कि कोई हमारे लिए कुछ तय कर देवे और कह तो देवे कि भैया आओ हम चले चल रहे, नहीं भैया चलना आपको अपने पैरों से, मैं आपके लिए चलूं तब भी मैं ही पहुंचूंगा, भले ही आपका ध्यान करके चलूं कि मैं इनके लिए चल रहा हूं, तब आप ना पहुंचेंगे, आप तो वहीं बैठे हैं, आपके लिए मैं चल रहा हूं तो मैं पहुंचूंगा। कोई किसी के लिए चले भी तो वो खुद पहुंचेगा, जिसे जिसे पहुंचना है उसे खुद चलना पड़े। ये सबसे पहले हमें तय कर लेना पड़ेगा कि मुझे अपने राग द्वेष को घटाने के लिए कुछ प्रयास करना है कि नहीं, मुझे कोई क्रिया, मैं दिन भर क्रिया करता हूं, मन वचन काय की क्रिया मैं निरंतर करता हूं, मुझे उस मन वचन काय की क्रिया में क्या ऐसा करना है जिससे कि मेरे राग द्वेष कम हो। क्रिया तो राग द्वेष से युक्त होकर के की जाएगी, भैया देख लो आप, मैं भी क्रिया कर रहा हूं आपको कुछ बातें सुनाने कहने की, उसमें भी राग भाव तो है ही, बिना राग भाव के तो होगा नहीं, तब तो बड़ी मुश्किल में डाल दिया। कि एक तरफ कह रहे हैं कि ऐसी क्रिया करो जिसमें कि राग द्वेष घटे, और जो भी क्रिया करेंगे वो तो राग द्वेष से युक्त ही होगी, उसके बिना हो कैसे सकती, बड़ा मुश्किल हो गया, नहीं यही तो आसानी है, ये मुश्किल नहीं है। ऐसी क्रिया जिससे कि द्वेष उत्पन्न हो, सबसे पहले उसका त्याग कर दो। द्वेष तो अप्रशस्त ही होता है, राग दो प्रकार का है, एक प्रशस्त है और एक अप्रशस्त है। जो पांचों इंद्रिय के विषय हैं और जो ये संसार में दिखाई पड़ने वाली चीजें हैं जो मुझे आशक्त करती हैं, इस प्रकार का विषयानुराग तो कम करो, जब जब भी राग द्वेष कम करने की चर्चा आवे तो भैया अब आगे अपन ये ध्यान रख लेंगे कि द्वेष हटाने और अप्रशस्त राग कमती करने की बात कही है। प्रशस्त राग तो निरंतर बढ़ता ही चला जाएगा, धर्मानुराग तो बढ़ता ही चला जाएगा, विषयानुराग घटता जाएगा और द्वेष भाव तो पूरी तरह से हटा ही देंगे। धर्मानुराग भी धीरे धीरे जब हमारी मंजिल पर हम पहुंच जाएंगे तो पीछे छूट जाएगा, उसे छोड़ने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। वो तो जंपिंग बोर्ड है, मैं जैसे ही जंप लेऊंगा बोर्ड पीछे छूट जाएगा। वो तो नाव की तरह है, मैं जैसे ही इस किनारे से उस किनारे पर पहुंचूंगा और उस किनारे पर उतरते ही साथ नाव को थैंक्स दे करके कि धन्यवाद, अब सिर पे कौन बुद्धू होगा जो नाव को धरे फिरेगा, वो तो पीछे ही छूट जाएगा। लेकिन मैं अगर उसको इसी किनारे पर छोड़ के बैठ जाऊं कि जब उस किनारे पर पहुंच के भी मुझे नाव छोड़नी है अल्टीमेटली तो मैं यहीं छोड़ देता हूं, ये पॉसिबल नहीं, ये संभव नहीं है। उतनी देर के लिए मुझे इस धर्मानुराग को भी अंगीकार, वैसे तो मुझे राग देश दोनों को ही छोड़ना है लेकिन अभी मैंने धर्मानुराग को रख रखा है और बाकी विषयानुराग और द्वेष इत्यादि को तो मैंने छोड़ने का प्रयास शुरू कर दिया है। बस इस क्रिया का नाम ही चारित्र है, असुहादो विनिवित्ति सुभे पवित्ति यजान चारित्तम। बड़ा स्पष्ट है, कहीं कोई मुश्किल नहीं है भैया, कितने आसानी से कह रहे हैं कि घबराने की बात नहीं है, जो तुम्हें मुश्किल खड़ी हो गई है उसको हम आसान बनाए देते हैं। देखो तो अशुभ से बच करके शुभ में प्रवृत्ति करने का नाम चारित्र है। चलो शुरू करो, अशुभ से जैसे बने तैसे बनो, बचो, अशुभ को छोड़ ही दो और शुभ की तरफ निरंतर बढ़ो। अच्छा करने लगो तो बुरे के लिए समय नहीं मिलेगा भैया, इसलिए सबसे पहले तो वो यही कहते हैं कि शुभ प्रवृत्ति, शुभ करना शुरू कर दो। मुझे मालूम है कि तुम्हारा लक्ष्य तो शुद्ध है लेकिन प्रवृत्ति कौन सी करो, जब शुभ और अशुभ में से वैसे तो निवृत्ति होनी चाहिए, वास्तव में चारित्र तो निवृत्ति है। सबसे विमुख होकर के हम शांत भाव से अपने आत्मा में लीन हो गए, ये जो आत्मलीनता है वो ही चारित्र है। कषायों के पूर्ण अभाव का नाम ही चारित्र है, लेकिन वहां तक कैसे पहुंचे इसके लिए उपाय बताते हैं कि पहले अशुभ से बच करके शुभ प्रवृत्ति करो। जब जब भी प्रवृत्ति करनी पड़े, 24 घंटे प्रवृत्ति करना पड़ती, निवृत्ति के क्षण तो बहुत थोड़े हैं, हाथ पे हाथ धर के आंख मीच के भी बैठ जाते हैं तो भीतर प्रवृत्ति तो चलती ही रहती भैया, बाहर की प्रवृत्ति रुक भी जाए तो भी भीतर तो शुभ अशुभ दोनों प्रकार के भाव चलते ही रहते। तो कहते फिर उसमें से भी शुभ भाव को प्रायोरिटी दो, अशुभ भाव को तो छोड़ ही दो। अशुभ भाव को छोड़ने के लिए भी ज्यादा प्रयास नहीं करना है, बस अकेला संकल्प कर लो कि मैं अशुभ को छोड़ता हूं, पर मन बार बार वहीं चला जाएगा अशुभ में। तो कहते तुम अपने को शुभ में एंगेज करके रखो ताकि अशुभ में जाने का अवसर ही ना मिले। मेरे पास दिन भर में इतने अच्छे काम हो कि मैं शाम तक उनको निपटा नहीं पाऊं तो बताइएगा मैं बुरे काम कब करूंगा। बहुत सीधा सा हिसाब है कि हम शुभ प्रवृत्ति को समय दें, अधिक से अधिक शुभ प्रवृत्ति में लग जाएं तो हम अशुभ प्रवृत्ति से अपने आप बच जाते हैं। बहुत सारे उदाहरण अपने जीवन में खुद अपन देखते हैं, हमने आपको शायद पहले भी कभी इस तरह के उदाहरण सुनाए हैं। कल ही शायद हमने आपसे कहा था कि या परसों कहा था कि संस्कार अच्छा प्रबल था तो सर्कमस्टेंसेस बहुत ऐसे थे कि बुरा करने को मजबूर होना पड़ा था, लेकिन फिर भी अच्छे का भले का संस्कार प्रबल था इसलिए बुरा करने की भावना होते हुए भी हम बुरा नहीं कर पाए थे। वही स्थिति हमें निर्मित करनी चाहिए। चेतना ऐसी विकसित हो जावे कि फिर हमसे बुरा हो ही नहीं, पर उसको विकसित करने के लिए अच्छे का संस्कार तो निरंतर प्रबल ही डालना पड़ेगा। और वो कैसे प्रबल संस्कार डालें हम, संयम या चारित्र कैसी चीज है, इसको थोड़ा सा और हम समझ लें। तो सबसे पहले हम चारित्र के मायने क्या ले सकते हैं, अनुशासन, यहां से शुरू करते हैं ताकि थोड़ा स्पष्ट हो। मैं सोच रहा था कि मैं दूसरे फॉर्म में कोई बात करूंगा, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, वैसा नहीं, वो थोड़ा कठिन पड़ेगा। बहुत आसान यही है कि हम पहले थोड़ा समझ लें संस्कार को मजबूत बनाने के लिए। मेरे भले संस्कार मजबूत हों, इसके लिए मुझे चारित्र अंगीकार करना है, ये ना मेरा उद्देश्य है। तो चारित्र के मायने क्या है? चारित्र तो बड़ी कठिन सी टर्म लगती है, संयम भी बड़ी कठिन टर्म लगती है कि अरे भाई ये तो संयम और चारित्र वारित का मामला तो बड़ा कठिन है, ये तो महाराज महाराज कोई शोभा देता है, अपन गृहस्थों को कहां शोभा देता, ऐसा लगने लगता है। तो चलिए ऐसा ना करके और हम ये कर ले कि अनुशासन, क्या अपने जीवन में जीवन को हम अनुशासित करना पसंद नहीं करेंगे? और अनुशासन भी तीन तरह का हो सकता है। एक तो बाई फोर्स, बंदूक की नोक पर कोई हमसे कुछ करवा ले, कर लेते हैं हम, बंदूक की नोक कह दिया मैंने, बंदूक की नोक नहीं और भी दूसरी चीज, जैसे कि डॉक्टर के पास पहुंचे और उसने अपना हाथ वाथ देखा और सिम्टम्स पता किए कि और डायग्नोस कर दिया कि आपको ये डिजीज है और अब आपको ये चीज नहीं खानी। मैंने कहा ओके अब नहीं खाएंगे भैया, क्या कर दें, अगर तबीयत ठीक करने हैं तो नहीं खाएंगे। ये कौन सा अनुशासन है? ये त्याग और ये अनुशासन बाई फोर्स किसी मजबूरी में किया जा रहा है, इसमें हमारा अपना कुछ भी कल्याण का भाव नहीं है, इसमें तो सिर्फ शरीर की दृष्टि है। ऐसा अनुशासन तो हमारे जीवन में बहुत है, हम रास्ते से चले जाते हैं और अगर किसी की टक्कर लग जाए तो एक बार गौर से देखते हैं कि आदमी कैसा है, अपन से कमजोर है तो लगाओ इसको भी, और अगर बलवान है चुपचाप निकल चलो अपनी गैर, बड़ा अनुशासन है। अगर थोड़ी गड़बड़ कर देंगे तो अभी मुश्किल पड़ जाएगी। नई कार लेकर के आए हो तो कैसे चलाते हैं? बड़े संभाल संभाल करके, कहीं खरोंच ना आ जाए, कहीं टक्कर ना लग जाए, हैं? एक अनुशासन ये भी है, अपने शरीर के प्रति हम सजग हो करके और उसकी रक्षा के लिए और बहुत प्रकार के अनुशासन स्वीकार कर लेते हैं। इस अनुशासन की यहां चर्चा नहीं है। एक और अनुशासन है, प्रेम का अनुशासन, किसी से हमारा बहुत स्नेह हो, लगाव हो और उस व्यक्ति को जो जो चीजें पसंद नहीं होती वे चीजें हम झट से छोड़ देते हैं, भैया रहने दो, आपको ये हमारा अच्छा नहीं लगता, हम प्रेमवश जो है छोड़ देते हैं कि हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी थोड़ी तो गुंजाइश है, इसमें पॉजिटिव अगर देखें तो, अगर भगवान से अनुराग हो जावे, भगवान से प्रेम हो जाएगे तो उन्हें जो जो अच्छा नहीं लगता वो करना शुरू कर दें हम, हैं? तो हमारा काम बन सकता है। लेकिन इसमें भी चूंकि दृष्टि में हमारे अभिप्राय में अभी उतनी स्पष्टता नहीं है, इसलिए तीसरा अनुशासन और रखा है, वो ये कि मेरे अपने आत्म कल्याण के लिए मुझे कुछ बातें अपने जीवन में से निल कर देनी है और कुछ बातें स्वीकार कर लेनी है। इदम कर्तव्यम, इदम ना कर्तव्यम, इदम आचरणीयम, इदम ना आचरणीयम, इति प्रतिज्ञाय नियमः, इसी का नाम अनुशासन है। वास्तव में आत्मानुशासन ही श्रेष्ठ अनुशासन है, जिसमें मैं अपने आत्मा के उत्थान के लिए, मैं अपने शरीर की सुरक्षा या किसी व्यक्ति विशेष के अनुरोध पर अनुशासन नहीं बना रहा हूं, मेरे अपने आत्म कल्याण के लिए मैं अब तय कर लेता हूं कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है, ये कहलाता अनुशासन। चलो ये भी ना बने तो कम से कम इतना तो कर ही लें कि जिंदगी बहुत लापरवाही में बीतती है भैया, और लापरवाही करना तो अच्छा नहीं अपने जीवन के प्रति। जो व्यक्ति इस लापरवाही को छोड़ देता है वही अपने जीवन को अनुशासित कर लेता। ऐसी लापरवाही कैसे आती है इस पे विचार किया कभी? हम जैसा अपने जीवन के बारे में सोच लेते हैं उस प्रकार जीना शुरू कर देते हैं, और उन चीजों के प्रति बड़े लापरवाह हो जाते हैं जिनका हमने सोचे नहीं। हम शरीर के प्रति बड़े सावधान हैं क्योंकि शरीर के बारे में हम बहुत कॉन्शियस हैं, शरीर के बारे में बहुत सजग हैं, और ऐसे ही अगर हम आत्मा के प्रति थोड़ा सजग हो जाएं तो हमारी लापरवाही जो आत्मा के उत्थान के प्रति है वो अपने आप घट जाएगी, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक व्यक्ति जो है वो अपने घर वापस लौटा रात में और उसने कहीं ड्रिंक विंक कर लिया होगा, वो नशे में था। वो ऐसा लगने लगता जब नशे में हो तो ऐसा नहीं लगता है कि मुझे अपने को संभालना है बाकी सबको संभालना। तो वो नशे में अपने घर आया और घर आया और उसने चाबी निकाली, और अब वो हाथ तो हिल रहा था उसका, वो ताला पकड़े तो चाबी खिसक जाए, चाबी ठीक ठीक लगाए तो ताला से हाथ हिल जाए, उसके कुछ समझ में नहीं आया। बहुत देर तक उसने कोशिश करी, एक पुलिस वाला भी देख रहा था वहीं पर खड़ा हुआ, इतनी रात में लौटा है कौन है, लेकिन ताला अपने घर का खोल रहा है तो ठीक है ऐसा सोच करके। तो उसने कहा लाओ आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं क्या? तो बोलता कि हाँ कर दो। तो कहता कि लाओ चाबी दो मैं लगा देता हूं। कह चाबी, चाबी तो मैंने घर की अपनी किसी को नहीं दी, अगर तुम्हें मदद करनी है तो ये जो मकान हिल रहा है ना जरा इसको पकड़ लो मैं ठीक से चाबी लगा दूं, मेरा हाथ हिल रहा है ये नहीं मान सकता मैं अपने प्रति लापरवाह इसी तरह से हूं। सब अपने प्रति इसी तरह लापरवाह हैं, कम से कम इस लापरवाही को ही कम कर दें। सब पूरी दुनिया को सुधारने में, शरीर को सुधारने में, आसपास के सर्कमस्टेंसेस वातावरण को सुधारने में, इतना ही देख लें। सुबह से शाम तक मैंने अपने चेतना के विकास के लिए क्या क्या करा, किस तरह से अपने आत्म विकास के लिए अपने आत्मा को अनुशासित किया है या नहीं किया है, बस इसी का नाम चारित्र है। और संतुलित जीवन जीने का नाम चारित्र है। देखिए एक डिसिप्लिन तो होना चाहिए, एक अनुशासन होना चाहिए जीवन का, इतना ही नहीं एक संतुलन भी होना चाहिए, बहुत लाइफ बैलेंस होनी चाहिए, किसी भी चीज में अति नहीं होनी चाहिए, इसके मायने हैं बैलेंस। हम लोग किसी ना किसी चीज में अति कर देते हैं, सब चीजों में, खाने पीने से लेके पहनने ओढ़ने बोलने चालने जितनी क्रियाएं करते हैं उनमें संतुलन रखें अगर तो बड़े आसानी से अपना काम बन सकता है, व्यवहार हो पर संतुलित हो, उसी का नाम चारित्र है। बहुत सारे अर्थ हैं, आज तो अपन इन दो ही अर्थ पे विचार करेंगे क्योंकि आपकी घड़ी नहीं, वैसे आपकी घड़ी से क्या फर्क पड़ने वाला, घड़ी थोड़ी आप चलाते हैं वो तो अपने आप चल रही, पर आपका समय और हमारा समय, तो दूसरी बात पर हमें थोड़ा सा विचार करना है कि हमारा जीवन संतुलित भी हो, अनुशासित भी हो, लापरवाही ना हो और संतुलित हो, किसी भी तरह की अति ना हो। आज अतिवादिता भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही, सेल्फ डिसिप्लिन तो लगभग चरमराई गया है और संतुलन भी गड़बड़ा गया है। उपवास करने बैठे हैं तो दो चार कर लेंगे चाहे शरीर की क्षमता हो चाहे नहीं हो, और नहीं करेंगे तो इतना खा पी लेंगे कि मरने की नौबत आ जाए ना। नहीं मतलब ये तो अति कहलाती है और क्या। पहले हमको याद है बचपन में कि घर में खीर बनती मान लो तो अपन तो पहली नंबर थाली लेके बैठ जाते, परसों जल्दी परसों, क्या बोलते हैं आप लोग, परसों नहीं बोलते क्या, परोसो, मतलब अच्छा शब्द वो है, अब बुंदेलखंडी भैया तो अपनी मदर टंग है वो तो परसों बोलने लगते हैं वो, तो कहते हाँ तो परसों, तो वो क्या परसेंगे, पहले दाल रोटी सब्जी परसेंगे, नहीं पहले खीर परसो, पहले जी खाओ, खीर तो बनी है खाने के लिए बनी हुई है, परसेंगे खीर, पहले तुम दो रोटी खा लो दाल सब्जी खा लो। डाइट भी बैलेंस होना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम प्रोटीन रिच प्रोटीन खा लोगे तो कार्बोहाइड्रेट कहां से लाओगे, इतना नहीं जानते थे, बुद्धू थे पुराने लोग, आज के लोग भले ही इस तरह की भाषा बोलते हैं पर वो इतना तो समझते थे कि पहले दाल रोटी और सब्जी तो खा लो, फिर उसके बाद ये रिच प्रोटीन की चीज बनी जिसमें कि दूध है तो उसमें भी फैट है और मान लो उसकी बनी है किसी भी आटे की बनी हो या कि आटे की बनती क्या खीर, और आपने कुछ भी नहीं कहा, हमने आटे की कहा और आपने सुन भी लिया, अरे कम से कम अच्छे से आपको कहना चाहिए था कि महाराज आटे वाटे की नहीं बनती खीर, तो बढ़िया से गेहूं की बनती है या कि चावल वावल की बनती है, है? तो ऐसे ऐसे लोग थे पहले कि वो अपने खाने पर भी संतुलन रखते थे कि कितना खाना है और किस किस प्रकार की चीज जो शरीर को सुरक्षित रखेगी, पहनने भी में भी अति नहीं करना, खाने में भी अति नहीं करना, बोलने भी, अब बताइएगा कहां बोलना और कहां नहीं बोलना इसका अपन विचार करते हैं, कितना बोलना कितना नहीं बोलना, वचन हो लेकिन विवाद ना हो, बस इतना ही ध्यान रहे, वचन वहां तक अच्छे हैं जहां तक कि विवाद नहीं होता, जिस क्षण विवाद होने लगे वचन समेट लो, रुक जाओ वहीं पर, मौन हो जाओ कि मैंने इसलिए थोड़ी इस वचन मुझे मिले थे। तीनों को संतुलित बनाना पड़ेगा, वाणी को भी मन को भी, अभी तो मन के बारे में विचार ही नहीं किया, अपन करेंगे फिर बैठ के, आज तो विस्तार लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, वाणी जिसमें कि विवाद ना हो और शरीर की वे सब क्रियाएं जिससे कि शरीर स्वस्थ प्रसन्न रहे, चाहे खाने पीने चाहे ओढ़ने पहनने चाहे चलने फिरने की हो, सब क्रियाओं को हमें बहुत संतुलित बनाना पड़ेगा। एक बहुत छोटी सी घटना मैं आपसे कहूं और बस मेरे ख्याल से पर्याप्त होगा, फिर आगे बढ़ाएंगे चर्चा। मैंने आज कोई उदाहरण भी बहुत कम दिया आपको, कोई कहानी वानी नहीं सुनाई, बहुत सारी चर्चा ही चर्चा में इतना सारा समय हो गया, मुझे मालूम है कि ये चर्चा तभी ठहरती है जब उसके साथ कोई उदाहरण हो। हम अपने जीवन को कैसे संतुलित बनाएं, कैसे उसमें कोई हमारे जीवन में अति ना हो, हो जाती है हमारे संस्कारवश पर हम कैसे उसको संभालें। एक बहुत छोटी सी सीधी सीधी सी बात है, एक साधु के पास में एक युवक पहुंचा और उसने कहा कि मैं अपने जीवन को संतुलित कैसे बनाऊं, मैं बहुत अति में पड़ जाता हूं। तो उन्होंने कहा कि सुनो, मैं कुछ इसके बारे में कहूंगा नहीं क्योंकि संतुलन का कोई उपदेश नहीं दिया जा सकता, तुम मेरे साथ रहो दो तीन दिन और फिर देख लो। तो वो रहा दो तीन दिन साथ में, तो पहले दिन ऐसा हुआ कि कुछ लोग आए और उन्होंने पहले तो साधु जी से थोड़ी ढंग से बात की, फिर बाद में आप इसे बाहर होकर के बात करने लगे और यहां तक कि गाली गलौज करने लगे साधु जी से। वो बाजू में बैठा हुआ था युवक, उसने कहा रे वाह अभी उठूं और इनको उठा करके बाहर फेंका हूं, उसके मन में तो ये आया। पर साधु जी ने इशारा किया कि मैंने तुम्हें सिर्फ ये कहा था कि जस्ट सी एंड वेट, सिर्फ देखो और बैठो, धैर्य रखो थोड़ा, अभी कोई कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, वो काम मेरा है। इतनी सारी बातें उनसे कहीं और वे लोग वापस लौट गए। साधु जी ने कहा कि कैसा लग रहा था, कैसा लग रहा था, आप नहीं रोकते तो हम देख लेता मैं इन सबको। अच्छा, दूसरे दिन फिर एक घटना घटी। बड़े प्यारे लोग आए, खूब सारी सामग्री चढ़ाई, महाराज की जय जयकार करी और ये युवक फूल करके कुप्पा की देखा, क्या मेरे महाराज हैं। और उसके मन में बहुत बातें आई कि इन लोगों से थोड़ा इनको बाहर तक बेच के आए। और फिर वो जब वो जाने लगे तो उसका मन हुआ कि हम बाहर तक बेच के आए। साधु जी ने कहा कि बैठो, चुपचाप बैठो, देखो। क्या मन में आया? यही मन में आया कि मैं इन सब से बहुत अच्छी बात करूं, आपकी इतनी प्रशंसा कर रहे थे और मैं इनके पैर छूं बाहर जाकर के। साधु जी ने कहा कि अभी आवश्यकता नहीं, अभी तीसरा दिन और है। तीन दिन का मैंने कहा था। तीसरे दिन जब जाने का समय आया तो उसने कहा कि आज तो आपने कुछ भी नहीं बताया हमको। बोले आज का दिन तो मुझे तुमसे कुछ कहने का नहीं था, तुम्हें स्वयं विचार करना चाहिए कि पिछले दो दिनों में जो घटित हुआ है वे दो तरह की अति थी और उनके बीच में तुम्हें विचार करना है कि कैसे संतुलन मैंने किया होगा। बस इतना ही मैं संदेश देना चाहता हूं। जब लोगों ने मुझे गाली दी तो मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, मैं प्रेम से ही बात करता रहा। जिन लोगों ने मुझसे प्रेम से बात की उनसे तो मैंने प्रेम से बात की ही, लेकिन फिर भी मैं फूल के कुप्पा नहीं हुआ और ना उनके पीछे पीछे गया, ना मैं उनको थैंक्स देने उनके पीछे गया, ना मारने वाले को मारने के लिए पीछे भागा। बस इतना ही संतुलन मेरे जीवन में रहे। जब मेरे जीवन में बहुत सुख के क्षण आए तो मैं उन सुख के क्षणों में भूल ना जाऊं, सब कुछ भूल करके और उसी में गाफिल ना हो जाऊं। और जब मेरे जीवन में दुख के और विषाद के क्षण आए तब भी मैं बहुत अधिक दुखी या विषण होकर के और अपने आपे में ना रह पाऊं, तो ये भी एक अति होगी। यही मैसेज है। संतुलित जीवन के मायने ये है कि सुख दुख तो सब आएंगे भैया, सुख भी आएंगे दुख भी आएंगे, बिल बहुत अल्टरनेट है ये। थोड़ी देर को सुख, थोड़ी देर को अच्छा लगने लगता है, थोड़ी देर को फिर ऐसा लगने लगता है। उन दोनों के बीच में कोई रास्ता है, दोनों में किसी भी अति को स्वीकार नहीं करना, बस यही संतुलन है। इसी का नाम तो चारित्र है। इसको अपन अपनी भाषा में समता कहते हैं या संतोष कहते हैं, इसको आज की भाषा में संतुलन कह दे मैं, बैलेंसिंग लाइफ। तो हम इस तरह अपने जीवन को अनुशासित और संतुलित बना सकते हैं। मैं सोचता हूं और अपन आगे बैठेंगे फिर समझेंगे कि और क्या हम अपने जीवन में कर सकते हैं। पर हमें यह ध्यान रखना है कि जो भी हम क्रिया करें, मेरा उद्देश्य उन विषयानुराग और द्वेष को कम करना है। धीरे धीरे मेरे मन में धर्मानुराग बढ़ता जाए, क्योंकि मेरी दृष्टि तो निर्मल हो गई, मेरा ज्ञान भी निर्मल हो गया। अब मेरा सिर्फ काम यह है कि उस निर्मल दृष्टि और निर्मल ज्ञान के साथ मेरे आचरण को मैं धीरे धीरे रिफाइन करते जाऊं, धीरे धीरे पवित्र करते जाऊं, धीरे धीरे अच्छाई की तरफ बढ़ते जाऊं। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर। हे गुरुवर। शाश्वत सुख दर्शक यज्ञ स्वरूप तुम्हारा है। जब जग विषया में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो अथवा वग शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में भवबंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे तर की कलिया दिन रात लुटाया करते हो शम सम की अभिनश्वर मनिया के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम विखो ज्ञान के प्रकाश विखो आप पर भाष विखो मानु शिव कानी है अनुभवताय वे को जीवों के जताय वे को काबू न सताय वे को भव्य और आनी है भवानी के ज्ञान से सूर्य लुका दो सुभानी मस्तक नमो सदा दे तुम ये दिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन तिरो शरणा गये सोमा सुभा